ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। आचार संहिता का पूर्ण पालन करते हुए मतदाताओं के अधिकार के बारे में सचेत कराने का संचार माध्यमों से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने किया आग्रह। मुस्लिम समुदाय हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं ईद उल फित्र का त्यौहार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया गया। और डेनमार्क पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रूस यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम की अपील। अब समाचार विस्तार से। वैशाख 30 गते होने जा रहे स्थानीय तह चुनाव के लिए अपना मनोनयन दर्ज करवा चुके उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में केंद्रित होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का पालन होने या न होने की बात पर जोर दिया है। वैशाख 17 गते उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलते ही सभी चुनावी प्रचार प्रसार में केंद्रित हुए। निर्वाचन आयोग में इसी बीच विभिन्न 31 आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुए हैं और विभिन्न संघ संस्था एवं व्यक्तियों पर 21 शिकायतों पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने संचार माध्यम, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और मतदाताओं को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी निर्वाचन आचार संहिता का सही पालन करते हुए मतदाताओं के अधिकार पर सचेत कराने का आग्रह किया है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने संचार माध्यमों से ऐसा आग्रह किया। अरबी कैलेंडर हिजरी संबत के मुताबिक दसवें महीना सौवाल के पहले दिन आज देश भर में मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज पढ़ने के साथ ही बड़ों से आशीर्वाद लेकर ईद उल फित्र का त्यौहार मना रहे हैं। दसवें महीना के पहले दिन नमाज पाठ खत्म होने के बाद 3 दिनों तक अपने मान्यजनों से आशीर्वाद लिया जाता है। ईद उल फित्र के अवसर पर आज सरकार ने देश भर सार्वजनिक छुट्टी दी है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने इस्लाम धर्मावलंबियों का त्यौहार ईद उल फित्र के अवसर पर कहा कि इस्लाम समुदाय की मौलिक संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में ईद जैसे त्यौहार महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति भंडारी ने आज एक सूचना जारी करते हुए इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने भी इस्लाम धर्मावलंबियों के पर्व ईद उल फित्र के अवसर पर एक शुभकामना संदेश के जरिए स्वदेश और विदेश में रहने वाले सभी इस्लाम धर्मावलंबियों की सुख शांति सुस्वास्थ्य की कामना की। नेकपा एकीकृत समाजवादी केंद्रीय सचिवालय की बैठक ने गठबंधन किए गए दलों के बीच सहमति कायम करने के लिए अंतिम तक भी प्रयास करने का निर्णय किया है। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल की अध्यक्षता में आज हुई बैठक ने महानगर और उपमहानगर में गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में संपूर्ण शक्ति केंद्रित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी नेकपा एकीकृत समाजवादी के महासचिव डॉ बेदुराम भूषाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश के विकास, लोकतंत्र की रक्षा और सार्वभौम सत्ता को बचाने के लिए नेकपा एमाले को स्थानीय तह के चुनाव में जीत हासिल करनी ही होगी। गृह जिला झापा के मेजीनगर में आज अगुआ कार्यकर्ता जमघट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं। सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेल ने कहा कि बहुत सोचने पर वीरगंज के मेयर में गिरिस और उपमेयर में बिना को उम्मीदवार बनाने का निर्णय राप्रपा ने लिया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जिला कार्य समिति परसा द्वारा आज वीरगंज के घंटाघर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय तह चुनाव के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार राप्रपा ने खड़े किए हैं। प्रविधि नियंत्रित पत्रकारिता के मूल नारे के साथ आज विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा ने कहा कि संविधान विपरीत प्रेस स्वतंत्रता विरुद्ध के कानून का संशोधन करने की तैयारी सरकार कर रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया एक्शन नेपाल और ऑनलाइन टीवी पत्रकार संघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन यानी कि आज दान होम जप तप कर अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया गया। आज के दिन किए गए दान होम जप तप का फल अक्षय यानी कि कभी भी नष्ट न होने की मान्यता है, इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। गोरखा में हुए जीप हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। चितवन से गोरखा बारात लेकर जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये जानकारी गोरखा के एसपी केदार खनाल ने दी। मरने वालों में गोरखा के बारपाक सुलीकोट वार्ड नंबर 5 चनौटे के करीब 50 वर्षीय देवी प्रसाद पोखरियल नवरपरासी, पूर्व की कावासोती नगर पालिका वार्ड नंबर 16 के करीब 80 वर्षीय उत्तम कुमार सिगदेल और काठमांडू महानगर पालिका 16 के 45 वर्षीय कमल नेपाल ने शामिल है। ये जानकारी एसपी खनाल ने दी। बता दें कि अन्य 2 लोग कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। आज देशभर में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 23 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। आज 93,546 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली, ये जानकारी मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत युद्ध विराम की अपील की। अपने डेनमार्क के दौरे के दौरान मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग बंद हो, दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और शांति कायम करें। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने उम्मीद जताई कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए मोदी ने कहा, हम युद्ध विराम और तुरंत बातचीत और डिप्लोमेसी की ओर लौटने की अपील करते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि भारत रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी रूस में हत्याएं रोकने और युद्ध बंद करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क पहुंचे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आचार संहिता का पूर्ण पालन करते हुए मतदाताओं के अधिकार के बारे में सचेत कराने का संचार माध्यमों से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने किया आग्रह। मुस्लिम समुदाय हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं ईद उल फित्र का त्यौहार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया गया और डेनमार्क पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रूस यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम की अपील। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।